आरिशा की आरव के साथ बहस हो रही थी, जहां बातों बातों में आरिशा ने आर्या की मॉम का जिक्र किया। आरिशा जानती भी नहीं थी कि उसने नादानी में क्या कह दिया। आरव और आर्या दोनों का ही मूड खराब हो गया था। आरव ने आर्या को गोद में उठाया और उसे अपने स्वीट में ले आया था। आरिशा अभी भी वहां बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने खुद से कहा, अब तक तो इतनी अच्छे से फाइट कर रहे थे, अचानक क्या हो गया जो दोनों परेशान हो गए? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? आरिशा मासूमियत से इधर उधर देखने लगी। आयु अब तक नहीं आई थी तो उसने अपने कदम आरव के स्वीट की तरफ बढ़ा दिए थे। वहीं कमरे के अंदर आते ही आरव ने आर्या को बेड पर बिठाया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। आरव ने आर्या का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मैंने इतना टाइम तुम्हारी मॉम को भी नहीं दिया होगा जितना तुम्हें दे रहा हूँ। हर तरीके से तुम्हारी केयर करता हूँ। तुम्हारी स्माइल देखकर मुझे आयु की याद आती है, पर फिर भी मैं खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके तुम्हारी हर जिद को पूरा करता हूँ। तुम जानते हो, तुम्हारी मॉम के अलावा मैंने कभी किसी के साथ बेड शेयर नहीं किया, इवन अयान चाचू के साथ भी नहीं, अपने मॉम डैड के साथ भी नहीं। फिर भी रोज रात तुम मेरे साथ बेड पर सोते हो। अपने इमोशंस में आरव ने काफी कुछ बोल दिया था। उसे एहसास भी नहीं था कि वो आर्या से आयु की बातें करने लगा था। आप मेरे साथ बेड शेयर नहीं करना चाहते डैड, वो तो मैं खुद आपके पास रात को आ जाता हूँ, आर्या ने आईज रोल करके जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुककर बोला, मैं ठीक हूँ। हाँ, कई बार उनकी बहुत याद आती है जब कोई उनका जिक्र कर देता है, लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता वो मुझे मिस करती भी हैं या नहीं। उनका पता नहीं, लेकिन मैं उन्हें कई बार बहुत मिस करता हूँ। आरव ने आगे की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे से बड़बड़ाकर बोला, जरूर मिस करती होगी। ये सोचकर खुद पर गुस्सा आता होगा कि उसकी गलती की वजह से हमारे बच्चों की जान चली गई। आरव की बातें आर्या को समझ में तो नहीं आई, लेकिन वो उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। आर्या और आरव ने डोर की तरफ देखा तो वहां आरिशा खड़ी थी। आरिशा का चेहरा देखते ही आरव को गुस्सा आ गया, तो वहीं आर्या के चेहरे पर क्यूट सी स्माइल आ गई। उसने आर्या को वहीं पर छोड़ा और दरवाजे के पास आकर बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना हमसे दूर रहना, बात वहीं पर खत्म हो गई थी। फिर तुम यहाँ वापस हमारे स्वीट में क्या कर रही हो? आरव गुस्से में आरिशा के साथ काफी रूडली बात कर रहा था। बात खत्म नहीं हुई है मिस्टर खुराना, आपने अभी तक मुझे सॉरी नहीं बोला है, आरिशा ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। अजीब बच्ची हो, हिसाब बराबर हो गया है। मैंने तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाला था तो तुमने मेरी गाड़ी खराब कर दी। गलती तो तुमने भी की है तो सॉरी इस हिसाब से तुम्हें भी कहना चाहिए, आरव बोला। उसकी बात सुनकर आरिशा सोच में पड़ गई। वो कुछ पल रुककर बोली, मैं अपनी गलती के लिए सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले गलती आपकी तरफ से हुई थी तो पहले आपको सॉरी कहना पड़ेगा मिस्टर खुराना, आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और चिढ़ते हुए कहा, ठीक है मेरी माँ, सॉरी, अब जाओ यहाँ से। मेरी तरफ से भी सॉरी, मुझे आपकी गाड़ी खराब नहीं करनी चाहिए थी, मेरी गलती बड़ी थी, आरिशा ने जवाब दिया। फिर उसने अंदर की तरफ झांकना चाहा। उसकी नज़र आर्या पर पड़ी जो बेड पर नजरें झुकाकर बैठा था। उसे देखते ही आरिशा ने कहा, उसका मूड ऑफ क्यों है, कहीं आपने तो उसे नहीं डांटा ना? मैं उसे नहीं डांटता हूँ और उसका मूड तुम्हारी वजह से ऑफ है, आरव ने जवाब दिया। फिर वो धीरे से बोला, एक्चुअली उसकी मॉम नहीं है और तुमने उसके सामने उसकी मॉम का जिक्र किया तो उसका मूड ऑफ हो गया। आगे से उसके सामने कभी भी उसकी मॉम के बारे में बात मत करना और इनफैक्ट सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम दोनों फिर से एक दूसरे से ना मिलो। आरिशा ने उसकी बात पर हामी भरी, फिर आरव को नीचे झुकने का इशारा करने लगी। आरव को उसका इशारा समझ नहीं आया तो वो कन्फ्यूशन से उसकी तरफ देख रहा था। उसने कंधे उठाकर पूछा, वॉट? अरे नीचे झुकने का बोल रही हूँ मिस्टर खुराना, इतना भी समझ नहीं आता क्या? आरिशा ने सिर हिलाकर कहा। वो काफी क्यूटली बात कर रही थी। आरिशा के कहने पर आरव नीचे उसके पास झुक गया। उसने गौर से उसकी आंखों की तरफ देखा तो वो बिल्कुल आर्या और उससे मैच करती थी। एक पल के लिए आरव को महसूस हुआ कि अगर उसकी बेटी जिंदा होती तो शायद आरिशा की उम्र की ही होती और उसी की तरह दिखती। अगले ही पल आरव अपने मोमेंट से निकल आया था क्योंकि आरिशा उसके कान के बिल्कुल पास आकर धीरे से बोली, मिस्टर खुराना आप बहुत रूढ़ हो, थोड़ा प्यार से बात किया करो ताकि उसे अपनी मॉम की याद ना आए। मेरे भी डैड नहीं है लेकिन मेरी मॉम और दादू कभी इस बात का एहसास नहीं होने देते, मैं उन्हें मिस भी नहीं करती हूँ, आरिशा काफी मैच्योरली बात कर रही थी। आरिशा के करीब आने पर अचानक आरव के मुंह से निकला, तुम्हारी खुशबू जानी पहचानी सी है,
लेकिन मैं तो कोई परफ्यूम यूज नहीं करती मिस्टर खुराना। मेरी मॉम बोलती है बच्चों को इसकी जरूरत नहीं होती, उनकी नेचुरल फ्रेग्रेंस काफी टेम्पटिंग होती है। आरिशा ने किसी बड़े की तरह जवाब दिया। आरफ से बात करते हुए आरिशा को एहसास हुआ वो पिछले 15 मिनट से उसके पास खड़ी थी। आयु को नीचे गए हुए भी काफी टाइम हो गया था। आरिशा आरफ से बात कर ही रही थी कि उसे लिफ्ट रुकने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से आरफ को बाय करते हुए बोली, बाद में मिलते हैं मिस्टर खुराना, मेरी मॉम आ गई है और उन्होंने मुझे रूम के अंदर नहीं देखा तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, और ट्रस्ट मी उनका गुस्सा दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। जाने से पहले आरिशा ने अचानक के गाल पर किस किया और फिर दौड़कर अपने स्वीट की तरफ चली गई। आरव उसे जाते हुए देख रहा था, उसके फेस पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। आरव वापस कमरे में जाने के लिए मुड़ा तभी उसे आयु उस तरफ जाती हुई दिखाई दी। क्या लगता है आरव और आयु की मुलाकात हो जाएगी? आरिशा आरव से बात करने के लिए उसके स्वीट में गई थी। आरव से बात करते हुए उसने लिफ्ट रुकने की आवाज सुनी। इसी के साथ आरिशा दौड़कर अपने स्वीट में चली गई। आरव कमरे में जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी अचानक उसे आयु जाती दिखाई दी। उसने आयु की तरफ देखा तो उसकी पीठ हारिया की तरफ थी। पहले आयु के बाल लंबे और स्ट्रेट थे, वहीं अब वो मिड बैक तक आते थे और रोल किए हुए थे। उसके बालों का कलर भी गोल्डन ब्लैक हाईलाइट किया हुआ था। आरव ने जब आयु को छोड़ा था तब प्रेगनेंसी की वजह से उसका वेट बढ़ा हुआ था, अब वो फिर से फिट हो गई थी तो आरव चाहकर भी उसे नहीं पहचान पाया। कैसी अजीब माँ है, अपनी बेटी को इतनी देर तक छोड़कर अपने कामों में लगी हुई थी। मैंने जब भी आरिशा को देखा है वो अकेली ही होती है, लगता नहीं कि इसे अपनी बेटी से प्यार भी होगा, आरव ने बड़बड़ा कर कहा और रूम के अंदर चला गया। उसकी बातें आर्या ने सुन ली थी। आर्या आरव को घूरते हुए बोला, वैसे आप भी मुझे अकेले छोड़कर अपने कामों में लग जाते हो, सब बड़े एक जैसे होते हैं, बोलकर आर्या बेड पर चला गया। आरव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसके पास आकर लेट गया। आरव आर्या के बालों को सहलाते हुए उसे सुला रहा था, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। पहली बार आरव ने उसे देखा था तब आरिशा के चेहरे पर कीचड़ लगा था, वहीं अगली बार में वो गुस्से में उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन जब आरिशा उसके करीब आई तो आरव ने उसे गौर से देखा और उसे महसूस भी किया।
आरव ने अपने मन में कहा, अगर हमारी आर्या जिंदा होती तो आज वो उस लड़के की उम्र की ही होती, या शायद दिखने में काफी हद तक उसकी तरह ही होती। उसकी आंखें कोइंसिडेंटली बिल्कुल हमारी फैमिली से मैच करती है। बोलते हुए आरव की आंखें नम होने लगी और ना चाहते हुए भी उसे वो दिन याद आ गया जब उसने एक साथ अपने परिवार को खो दिया था। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद आरव ने आयु को फैज को दे दिया था और फिर वो खुद वहां से बाहर आ गया। उसके गुस्से के आगे कबीर और माहिला को भी उसके साथ आना पड़ा। अब आरव वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। बाहर आने के बाद आरव ने सख्त शब्दों में कहा, मुझे यहां एक मिनट के लिए भी नहीं रुकना है, मैं जा रहा हूं और तुम मेरे साथ चलोगे कबीर। कबीर को अभी भी कुछ उम्मीद थी, उसने आरव की तरफ देखा। आप एयरपोर्ट पहुंचिए, मैं आता हूं, मुझे यहां कुछ काम है, कबीर ने धीमी आवाज में जवाब दिया। आई होप तुम्हारा काम आयुष्का सिंह ओबेरॉय से जुड़ा हुआ ना हो, आरव कोल्ड वॉइस में बोला। वो इस वक्त ऐसे बात कर रहा था जैसे आयु के साथ उसके सारे रिश्ते खत्म हो गए हों। आरव माहिरा के साथ वहां से लौट गया जबकि कबीर अभी भी दुबई में ही था। वो फैज के विला के अंदर गया। वहां बॉम्ब ब्लास्ट के बाद सिक्योरिटी थोड़ी देर के लिए ठप हो चुकी थी, इसलिए अंदर जाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। आउटहाउस वाली जगह में आग लगी थी, फिर भी कबीर वहां बच्चों को ढूंढ रहा था। बच्चों को ढूंढते हुए उसने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से उस तरफ गया। वो आर्या था। कबीर ने जल्दी से उसे गोद में लिया। अगर ये जिंदा है तो शायद दूसरा बच्चा भी जिंदा हो सकता है, कबीर ने खुद से कहा और उम्मीद भरी नज़रों से सब तरफ देखने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे वो दूसरी बच्ची नहीं मिली तो सिक्योरिटी के चलते कबीर को वापस बाहर आना पड़ा। आरव इंडिया पहुंच चुका था और अपनी फैमिली के साथ था। कुछ घंटे तक तो आरव ने किसी से बात भी नहीं की थी और वो अपने कमरे में बैठकर अकेले रो रहा था। गौरवी जी के बुलाने पर आरव नीचे आया और विला में जो भी हुआ उसने सबको बता दिया था। आरव की आंखों में आंसू थे और वो गौरवी जी के गले लगकर रो रहा था। दादी, मैंने उन दोनों को खो दिया और ये सब उसकी वजह से हुआ है। मेरी लाइफ में हमेशा इतनी प्रॉब्लम्स रही हैं लेकिन मैंने खुद को कभी इतना लो फील नहीं किया। उसने मुझे ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं दी। आई विश कि वो कभी मेरी ज़िंदगी में आई ही नहीं होती। नफ़रत है मुझे उस लड़की से। मैं कोसता हूँ हर उस लम्हे को जब मैंने उसे प्यार किया, आरव रोते हुए बोला। गौरवी जी की आंखों में आंसू थे। इस वक्त उनके पास बोलने को कुछ नहीं था। पहले ही आरव को टूटा हुआ देखकर वो तकलीफ में थी। वही सब सुनने के बाद छवि ने धीरे से कहा, मैंने उसे जाने से रोका था। फैज खान ऐसा ही है, वो उसके पास गई तो उसके इरादे और मजबूत हो गए और उसने ये कदम उठा लिया, वरना वो बच्चों को कभी नहीं मारता। आरव ने छवि की तरफ देखकर कहा, आज मेरे बच्चे ही नहीं मॉम, मेरे हर रिश्ते मर गए हैं। आरव खुराना मर गया है, इससे अच्छा वो मुझे मार देता। आरव उनसे बात कर ही रहा था कि तभी कबीर वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक बच्चा था और उसे देखकर आरव की उम्मीदें फिर से जाग गईं। वो दौड़कर कबीर के पास गया और उस बच्चे को अपने हाथ में ले लिया। आरव ने कबीर से कहा, आरव्य जिंदा है तो आर्या भी जिंदा होगी, तुमने उसे ढूंढा क्यों नहीं? हम वापस चलते हैं, उसको देखने चलते हैं। कबीर ने नजरें झुकाकर नामे सिर हिला दिया। वो धीरे से बोला, मैंने उसे वहां ढूंढा था, वो नहीं मिली, किस्मत से ये जिंदा है। इस वक्त आरव को आर्या के मरने का दुख था, लेकिन साथ ही आरव्य को देखकर मानो उसकी सांसें लौट आई हों। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे मेरी जीने की वजह लौटा दी है कबीर, आरव ने नम आंखों से कहा। उसने तुरंत आर्य को अपनी गोद में ले लिया और उसकी तरफ देखने लगा। बस उसी दिन से आर्य ही उसके जीने की एकमात्र वजह थी। भले ही आर्या की स्माइल उसे आयु की याद दिलाती हो, लेकिन फिर भी उसने अपनी तरफ से आर्या को हर तरीके से प्यार दिया था। पुरानी यादों से बाहर निकलने के बाद आरव की आंखें नम होने लगी। उसने आर्या की तरफ देखा, जो गहरी नींद में सो चुका था। आरव ने उसके फोरहेड पर किस किया और फिर उसे सीने से लगाकर खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। वही आयु रूम में पहुंची तो उसने देखा आरिशा टैबलेट में गेम खेलने में बिजी थी। आयु ने देखा कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था, एक भी सामान इधर से उधर नहीं हुआ था। उसने आरिशा की तरफ घूर कर देखा और फिर उसके पास गई। आयु ने आरिशा का चेहरा ऊपर की तरफ करके कहा, तुम इतनी शांत हो, कमरा भी वैसे का वैसा पड़ा है। जहां तक मैं जानती हूँ, अब तक तुम इस कमरे में तबाही ला चुकी होती। सच बताओ, मेरे जाने के बाद कहाँ गई थी तुम? आपको कैसे पता चल जाता है? आरिशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। फिर उसने अपने होंठों पर हल्की मुस्कुराहट दी और आयु के गाल पर किस करके कहा, मैं बस घूमने के लिए थोड़ी देर बाहर गई थी। डोंट वरी, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की है और जिस मकसद से मैं इस होटल में रुकी थी वो भी पूरा हो गया है। कौन से मकसद की बात कर रही हो तुम, और इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें सिखाता कौन है? आयु ने हैरानी से पूछा। ये मेरा बॉर्न टैलेंट है, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, आरिशा ने आई विंक करके कहा और फिर स्माइल करने लगी। आयु ने उससे आगे कुछ नहीं पूछा। वो अपने साथ खाना लेकर आई थी, जिसे खाने के बाद वो आरिशा के साथ सोने जा चुकी थी। उसे तो एहसास तक नहीं था कि आरव से उसने हमेशा आरिशा को बचा कर रखा। वो उसकी एब्सेंस में उससे मिल भी चुकी थी। आरिशा सो चुकी थी जबकि आयु उसके चेहरे को देख रही थी। रात को सोने से पहले ना चाहते हुए भी आयु के जहन में कड़वी यादें ताजा हो जाती थी। आयु की आंखें नम होने लगी। वो धीरे से बोली, आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से आज तुम इस दुनिया में नहीं हो। आई मिस यू सो मच आरव्या।